हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 5। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अपरियमितस्त्वन्यं प्राकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरियमितस्त्वन्यं प्राकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरियमितस्त्वन्यं प्राकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। शब्दात् अपरा अर्थात निष्कृष्ट जड़, इयम् अर्थात यह, इत इसके अतिरिक्त, तु लेकिन, अन्यम् अन्य, प्रकृति प्रकृति को, विधि जानने का प्रयत्न करो, मैं मेरी पराम उत्कृष्ट यानी चेतन। जीवभूता महाबाहो, जीवभूताम अर्थात जीवों वाली, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, यया जिसके द्वारा इदम यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है या दोहन किया जाता है, जगत यानी संसार। अनुवाद, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक यानी अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति यानी शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल यानी पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, अपराशक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं है जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनो भृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यति तेति नियमो ध्रुव नेतरथाम् अजनी च यन्नयम् तद्विमुच्य नियन्त भवेत् सममनो जानताम् यदमतम् मतदुष्टतया। अर्थात हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागत से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति यानी जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न वैभव अपनी शक्तियों के विषय में बता रहे हैं। जैसा कि कल भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 4 में बताया, भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति दृष्टदा। ये 8 प्रकार की मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। भिन्ना माना सेपरेट है, मुझसे अलग है, मेरी क्वालिटीज से इसकी क्वालिटीज अलग है। और वो कौन सी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और आज भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अपरेयम इतस्त्वन अपरेयम इतस, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताई, कौन सी बताई? 8 प्रकार की बताई ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। दीज आर ऑल अपरे। अपरे है मेरी निष्कृष्ट है, निष्कृष्ट। अब देखो, किसी भी व्यक्ति के पास एक शक्ति नहीं होती है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। इनमें से वो खुद बताता है कि भाई ये शक्ति मेरी निष्कृष्ट है या ये मेरी उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब ये कम वैल्यू वाली है या ये, क्योंकि निष्कृष्ट का मतलब है ये जड़ है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर विवेक नहीं है, चेतना नहीं है, है ना। जैसे पृथ्वी है या जल अग्नि वायु आकाश, इनसे मिलकर कोई भी वस्तु जब बनती है तो उसके अंदर चेतना नहीं होती है, उसके अंदर प्राण नहीं होता है, वो मूव नहीं कर सकती है, उसके अंदर भावना नहीं होती है, है ना। लेकिन जब तक उसके अंदर आत्म तत्व नहीं होता ना, भगवान की उत्कृष्ट शक्ति का जब हम उसके अंदर सम्मिलन नहीं होता है, तब तक उसके अंदर कोई भी चेतना नहीं होती है। अब भगवान उस वास्तव में जो भगवान की उत्तम शक्ति है, जो उत्कृष्ट शक्ति है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं यहाँ पर, अपरियम इतस, ये तो अपरा शक्ति है, निष्कृष्ट है, जड़ है। त्वन्याम, तू मतलब लेकिन, लेकिन मतलब अब खास बात बताने वाले हैं। और क्या कहते हैं? अन्याम, एक दूसरी भी है, क्या प्रकृति है मेरी, एक दूसरी भी शक्ति है, विद्धि में पराम, इसको तुम पराशक्ति मानो। इसको क्या जानो कि ये बहुत ही उत्कृष्ट शक्ति है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक किसी भी मैटर के अंदर स्प्रिट नहीं होगा, भगवान की पराशक्ति के अंदर जब तक भगवान की पराशक्ति का सम्मिलन नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसके अंदर आत्म तत्व होना आवश्यक है। इसे भगवान कहते हैं अपरियम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा। मेरी एक दूसरी जो शक्ति है उसका नाम है पराम। तो अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जिस तरह अपरा शक्ति में आठ चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो अर्जुन पूछ सकते हैं भगवान, फिर आपकी पराशक्ति में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं जीव भूताम महाबाहो। वो जो जीव है वास्तव में, जो आत्मा है, जीव आत्मा, वही मेरी परा प्रकृति है। और उसका कार्य क्या है? यययधम धारयते जगत। ये इस पूरे जगत के अंदर जो कुछ भी है उसको दोहन करता है, उसको परा जो प्रकृति है वो उत्कृष्ट प्रकृति है भगवान ने, भगवान की। और वो क्या करती है? भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है, जो कुछ भी है उसको यूज करती है। जैसे ये भौतिक जो शरीर है वो क्या है? भगवान की अपरा शक्ति है, अपरा प्रकृति है। और जीव जो है इस भौतिक शरीर के अंदर मतलब विराजमान होकर हृदय के अंदर, फिर इस भौतिक जगत के वस्तुओं को यूज करता है। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्थूल तथा सूक्ष्म, यानी कि अब स्थूल क्या है? दो चीजें, जैसे ये कल हमने पढ़ा अपरा प्रकृति के विषय में, उसमें दो हैं। इस अपरा प्रकृति के दो पार्ट हैं, एक स्थूल है और दूसरा सूक्ष्म है। स्थूल क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल है। स्थूल मतलब ये दिखते हैं, अगर मतलब वायु भले दिखता नहीं है लेकिन फिर भी ये रियलाइज होते हैं कि ये वस्तुएं हैं। और सूक्ष्म पार्ट क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये बिल्कुल सूक्ष्म है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, इसको रियलाइज भी नहीं करते हैं, बस एक सिम्टम्स हैं कि ऐसा है। तो स्थूल और सूक्ष्म जो है वो सब क्या है? ये सब अपरा प्रकृति है। और जो जो परा प्रकृति है उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि स्थूल और सूक्ष्म अपरा प्रकृति का उपभोग करते हुए जीव भूता महाभाव यही दम धारयते जगत, जब वो उस जगत को धारण करता है और उसको अपने जीव जो है वो इसमें आता है, इस अपरा प्रकृति को यूज करता है, तो अपने वास्तविक मन, बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि जो है वास्तविक, जो उसकी वास्तविकता है कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान की शक्ति हूँ, वो विस्मृति हो जाती है, उसको वो भूल जाता है। और इस भूलने के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जब तक जीव को ये याद हो जाए ना कि मैं वास्तव में भगवान की अपरा प्रकृति हूँ और प्रकृति यानी शक्ति हूँ, तो शक्ति का काम क्या है? शक्तिमान की सेवा करना। जो उस जो शक्तिमान, जिसकी शक्ति है उसकी सेवा करना ही शक्ति का कर्तव्य है। लेकिन अब याद नहीं रहता है, वो इस संसार में आकर माया के द्वारा विमोहित हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पत्र प्राप्त होता है। यही मुक्ति है कि जीव को अपनी वास्तविक स्थिति याद आ जाए कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक भगवान ने बता दिया कि जीव क्या है? मेरी शक्ति है। अब जीव अगर ये बात को मान ले कि मैं भगवान की शक्ति हूँ, तो वो क्या कार्य करेगा? जाहिर सी बात है वो भगवान की शक्ति है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेगा, लेकिन जीव भूल जाता है कि मैं भगवान की शक्ति हूँ। वो ये सोचता है कि इस संसार में मैं आया हूँ और मुझे अपने आप को प्रसन्न करना है, और ये भी भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। वो अपने आप को ये जो मैटर से बना हुआ जो शरीर है वही देहात्म बुद्धि में आकर अपने इस शरीर को संतुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है, जो कि संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, वो तो अपरा प्रकृति है, वो तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। भौतिक इंद्रियों को, भौतिक काम वासना को संतुष्ट करना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जो है वो वास्तव में इस शरीर की है ही नहीं। वास्तव में इच्छा जो है वो जीव आत्मा कर रही है, जीव आत्मा इच्छा कर रही है, तड़प रही है, संतुष्टि चाहिए उसको, आनंद चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो आनंद इस भौतिक शरीर को उसके विषय प्रदान करने से प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि हम ये भौतिक शरीर है ही नहीं, तो फिर उसको भले कितना ही उसका विषय भौतिक शरीर को प्राप्त हो जाए, यानी ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ जो ये शरीर है, जैसे पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, उनको भले उनके सारे विषय पर्याप्त मात्रा में भी प्रदान कर दिए जाए, आंखों को सुंदर सुंदर दर्शन, कानों को सुंदर सुंदर उसके अनुसार जो उसको चाहिए उसके अनुसार सुंदर सुंदर साउंड्स, जीवा को सुंदर सुंदर टेस्ट, और शरीर को सुंदर आलिंगन भी यदि प्राप्त कर दिया जाए तो भी आनंद नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आनंद की मांग है वो इस जड़ बने हुए अपरा प्रकृति की मांग ही नहीं है। वास्तव में आनंद की मांग किसकी है? ये जीव भूता महाबाहु जो भगवान की परा प्रकृति है, जिसमें सारे जीव आ जाते हैं, वो भगवान की परा प्रकृति है, और क्योंकि उनके गुण भगवान के समान है, उसके अंदर क्वालिटीज भगवान की जैसी है। अब भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है तो जीव भी सच्चिद आनंद स्वरूप है, और वो उसको चाहिए भी क्या? आनंद चाहिए। और उसको आनंद किससे प्राप्त हो सकता है? जो वास्तव में सच्चिद आनंद है ना, जो ये भौतिक वस्तुएं हैं जो कि जड़ पदार्थ से बनी हुई जड़ वस्तुएं, वो कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं। पहले जो मैंने तुमको श्लोक नंबर 4 में बताई है वो मेरी अपरा प्रकृति है, और मेरी दूसरी परा प्रकृति आला प्रकृति है, जो कि जीव जिसको बोला जाता है, और इस वो क्या करती है? इस पूरे जगत को धारण करती है, इस पूरे जगत के जितने भी वस्तुएं हैं उनका विदोहन करती है, और स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और वो भगवान की पराशक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील होता है। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाता, यानी इस संसार में कुछ भी नहीं, क्रिया नहीं हो सकती, कार्य नहीं हो सकता, गति नहीं आ सकती जब तक कि जो परा प्रकृति भगवान की जो जीव है उसके द्वारा इसको गतिशील ना बनाया जाए। क्योंकि भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके अंदर कोई चेतना नहीं होती है। जैसे अब आप, जैसे एक ड्रामा हो रहा है, आप सब बैठ के एक ड्रामा देख रहे हो, ठीक है? सबके अंदर दो चीजें हैं, एक तो परा प्रकृति है जिससे ये अपरा प्रकृति है जिससे ये शरीर बना है, और एक परा प्रकृति है जो इसके अंदर जीव बैठा हुआ है। दो शक्तियां, समझ में आ रही ना? अब ये दोनों शक्तियां एक साथ जब होती हैं तब कोई कार्य होता है। हम अपने नेत्रों से उस ड्रामे को देख रहे हैं, और देखने के साथ साथ हमारे अंदर कोई ना कोई भाव आ रहा है, समझ में आ रहा है कि वो दुखी हैं, सुखी हैं, वो कैसा कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग कैसी कर रहे हैं, और जो कुछ भी स्टोरी होती है वो भी हम सुन रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें फीलिंग्स आ रही होती है। अब वही कार्य, वही ड्रामा जो है वो हमारे सामने एक कैमरामैन है वो भी देख रहा है, और एक कैमरा है वो भी देख रहा है, कैमरा के भी लेंसेस होते हैं जिसके द्वारा वो ड्रामे को देख रहा है। अब हम जो भी हैं वो उस ड्रामे को देखकर कुछ न कुछ फील कर रहे होते हैं कि वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो अच्छी नहीं कर रहा है, ये साउंड कितने अच्छे हैं, ये बैकग्राउंड कितना अच्छा है, कुछ ना कुछ माइंड में आ रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। लेकिन क्योंकि उस कैमरा के अंदर चेतना नहीं है, जीव नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो बस हमारे ऑर्डर पे चलता है, कार्य करता है, उसके अंदर कोई भी चेतना नहीं होती है। लेकिन इसी तरह से हम भी जब हमारे अंदर जीव आत्मा होती है तब हम इस संसार की हर एक वस्तु का आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही जीव आत्मा उसमें से निकल जाती है फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, ना वो आनंद प्राप्त कर सकता है और ना ही प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। यानी कि जीव आत्मा जो है वो ही एकमात्र आनंदित हो सकती है अगर वो सही तरीके से आनंद प्राप्त करने का के बारे में ज्ञान प्राप्त करे। तो यहाँ पर भगवान श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। वास्तव में यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही खास बात बताई है कि क्योंकि जीव आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान आगे बताएंगे कि ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनेक शक्तियों में से जीव आत्मा भी भगवान की एक शक्ति है, और जब ये शक्ति भौतिक बंधन से कलमश से मुक्त हो जाती है, कलमश क्या है, केवल और केवल विस्मृति ही कलमश है कि जीव अपनी वास्तविकता भूलकर इस भौतिक जगत के साथ संबंध जोड़ देता है, हालांकि इस भौतिक जगत से उसका कोई संबंध नहीं है, वो भगवान का अंश है, भगवान के साथ उसका संबंध है, और जब वो दोबारा से अपने संबंध को याद करता है तो फिर क्या होता है, वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उसको याद आ जाता है कि मैं भगवान की शक्ति हूँ, तो मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए कार्य मैं नहीं कर सकता। यानी कि एक अंश जो होता है वो सदैव पूर्ण की सेवा करके ही आनंदित होता है। आंखें यदि सोए तो सोचे कि मैं खाना खाऊंगा और उससे प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आंखों को केवल इस शरीर के लिए एक कार्य करना है, उसका काम क्या है, देखना है, देखो देखो देखो, बस यही काम है उनका, उनका खाना खाना काम नहीं है। उसी तरह से हर एक इंद्रिय का एक अलग अलग काम होता है, लेकिन वो काम क्यों कर रहे हैं, पूरे शरीर को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो शरीर के अंश है। उसी तरह से भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है और जो आत्मा दी है, भले ही वो हमारे पास अभी आत्मा जो है वो वास्तव में हम आत्मा है और भगवान की शक्ति है, तो उसका काम क्या है, एक ही काम है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। अब भगवान को किस तरह से प्रसन्न करे, जैसे भी वो जो भी कार्य कर रहा है, अब जिस भी शरीर में उसको डाल दिया गया है, वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें अगर उसकी बुद्धि ये आ जाती है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो उसका छोटा सा कार्य भी भक्ति बन जाता है, फिर वो कार्य जो है वो उसको बांधता नहीं है। इसीलिए भगवान बताते हैं 3.13 में कि यज्ञ शिष्टाचार संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषम। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो समस्त कलमशों से आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन यदि जीव मुंजते ते त्वगम पापाम ये पचन्ति आत्म कारण। अगर अपनी इच्छा की, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करोगे तो फिर क्या होगा, आप बहुत बहुत अपराध जो है वो उनको भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है ना, क्यों भोगना पड़ेगा मुझे अपराध जब मैं अगर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करो, तो इसलिए भोगना पड़ेगा क्योंकि आपको अधिकार नहीं है अपने इंद्र तृप्ति के विषय में सोचने का। आप भगवान का अंश हो, भगवान की शक्ति हो, तो भगवान की शक्ति होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो यदि जीव वास्तविकता अपनी जब तक नहीं याद करता है, अगर ठीक है वो नहीं करता है, अगर कोई सोचता है कि मैं ये कार्य नहीं करता हूँ, तो उससे ही दुख भोगना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आंखें यदि सोचे कि आज मैं आंखों में खाना डालना है, बस आंखों के जरिए मैं संतुष्ट होना चाहती हूँ, तो आंखों में खाना खिलाऊंगी तो क्या दाल राइस वो पालक सब्जी तक चपाती अगर आंखों के द्वारा खाएंगे तो क्या आंखों को ही कष्ट मिलेगा ना। उसी तरह से जीव आत्मा इस शरीर के अंदर आकर यदि ये सोचती है कि मुझे संतुष्ट होना है, तो फिर उसी को कष्ट भोगना पड़ता है। वास्तव में जीव आत्मा की मुक्ति या आनंद इसी में है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। इस संसार की प्रत्येक वस्तु केवल इसीलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश उनके अंदर है। और जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो इसलिए गतिशील हैं, वो इसलिए कार्य कर सक रहे हैं क्योंकि स्वयं भगवान उनके अंदर है। वरना तो देखिए, हम जब भी कोई गेंद या कोई वस्तु ऊपर फेंकते तो क्या होता है, नीचे गिर जाती है ना। लेकिन एरोप्लेन जो है वो जब ऊपर यहाँ से उड़ता है तो ऊपर ही उड़ता है, गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसके अंदर पायलट बैठा हुआ है, वो उसको उड़ा रहा है। उसी तरह से सारे प्लैनेट्स भी हवा में तैर रहे हैं, और उसका कारण क्या है, क्योंकि हर एक प्लैनेट में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने एक विभिन्न रूपों में विराजमान है, इसलिए उन सब प्लैनेट्स को चला रहे हैं। तो भगवान ने हमें अपनी दो शक्तियों के विषय में बताया, जिनमें एक तो भगवान की अपरा शक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और दूसरा भगवान की परा प्रकृति यानी जीव आत्मा, जो इन समस्त भौतिक वस्तुओं को विदोहन करता है। अब आगे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार संसार की हर वस्तु इन दो प्रकृतियों से मिलकर बनी है, यानी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के मिलाप से ये संसार की समस्त वस्तुओं का निर्माण होता है, और किस तरह से सांसारिक जीव जो है वो अपने आप को इन भौतिक वस्तुओं का ओनर मानना शुरू कर देते हैं और भगवान की माया के द्वारा भ्रमित होकर उनको कष्ट भोगना पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।